स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत अच्छी कोटेशन है, एक पीस ऑफ लिटरेचर है इंग्लिश में, जिसका हिंदी में सार ये है कि ओस की बूंद अगर कीचड़ में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, वही ओस की बूंदें फ्लावर पेटल्स पर, फूलों की पंखुड़ियों पर गिरती है तो मोतियों की तरह चमकती है, और वही ओस की बूंद सीप के मुंह में गिरती है तो मोती बन जाती है, रियल मोती बन जाती है सीप के मुख में। द ड्यू ड्रॉप इज सेम बट कंपनी मैटर्स। ओस की बूंद वही है, संग किसका लिया ये बहुत मायने रखता है। और ब्राह्मणों को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए अच्छे संग की हमेशा आवश्यकता होती है। अच्छी पालना मिलती है, अच्छा संग होता है, फिर आगे वो अच्छी पालना देते हैं, उनका संग सबको पसंद आने लग जाता है, तो इस तरह संग का रंग लगता ही जाता है। बहुत बहुत आवश्यक है भगवान के संग में रहते रहते साथ में ईश्वरीय परिवार का भी संग मिले और वो लंबे समय तक अच्छा चलता रहे। किस किस तरह से हमारे आदरणीय प्रताप भाई जी के जीवन में बचपन से ही श्रेष्ठ संघ का बहुत असर रहा, जो मैंने खुद देखा जब हम चंडीगढ़ में आए थे आज से लगभग 29-30 वर्ष पहले। तो उस वक्त पहले एक छोटे शहर में 2 साल सेंटर पर रही, फिर जब चंडीगढ़ में आई तो मैंने देखा तब तक प्रताप भाई जी अपने मधुबन आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इनके साथ वहाँ अच्छा कुमारों का एक ग्रुप था, बहुत अच्छे कुमार, अच्छे सेवाधारी, योगी, योग प्रिय, योग को पसंद करने वाले, जिसको कहते ना टेस्ट बैठा हुआ हो। और इस ये किस बात का रिजल्ट था जो हमने देखा कि हमारे बड़े दीदी आदरणीय अचल दीदी वो इस चीज पर बहुत बहुत बल देते थे कि हर एक आत्मा की योग की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस सेंटर पर योग भट्टियों का वातावरण इतना पावरफुल देखा हमने कि बहुत बहुत कुछ हमें वहां सीखने को मिला। प्रताप भाई जी ने एक बार बताया था कि जब मैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया था तो अचल दीदी हफ्ते में एक बार दो बार अवश्य पत्र लिखते थे, बहुत केयर करते थे, ध्यान रखते थे कि ऐसे अच्छे कुमार हमेशा स्थायी, अच्छे और शक्तिशाली ही रहने चाहिए, इन पर माया का संग का रंग ना लग जाए, इस बात की वो बहुत केयर करते थे। आपके जीवन में यहाँ आने के बाद दादियों का संग, पहले साकार बाबा मम्मा के संग आप रहे हैं, इनका पूरा परिवार ज्ञान में था। मेडिकल वाला बायोडाटा तो मैं नहीं सुनाऊंगी, वो तो बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन जो बाबा के ज्ञान वाला बायोडाटा है आपका बहुत ही सूदिंग है कि पूरा परिवार ज्ञान में होने की वजह से आपकी बहन समर्पित, माँ बाप समर्पित, जैसे दो बहनें, सभी परिवार ज्ञान में था। और चंडीगढ़ के आप वीआईपी कुमार थे, वहाँ सेक्टर 16 के हॉस्पिटल में आप वहाँ डेप्टी डायरेक्टर थे, क्या बोलते हैं पता नहीं आपकी लाइन में, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट या कुछ, तो वो आप थे। तो वहाँ से आना ही बड़ी बात थी, कुछ भी नहीं चाहिए, एक अंदर की ये स्थिति कि बाबा मिला सब कुछ मिला, इस स्थिति ने आपको यहाँ उस वहाँ 16 सेक्टर के हॉस्पिटल के मुकाबले एक छोटे से ग्लोबल हॉस्पिटल का हेड बनाकर यहाँ बिठा दिया। मैंने वहां को कहा कि आप चंडीगढ़ नहीं आते हो, तो कहते जब नौकरी होती है ना तो बंदा 9 से 5 बजे तक काम करता है, और जब अपना काम होता है ना तो सुबह 5 से रात के 9 बजे तक काम करता है। इसीलिए अब इनका अपना काम हो गया था, अपनी सेवा बाबा ने जो दी वो अपना कार्य है, तो वो फिर इतना दिल जान से करना पड़ता तो समय तो लगाना ही था। तो इसीलिए पूरा संपूर्ण समय तन मन धन सब सहित आपने यज्ञ में बहुत बहुत अच्छी सेवा की है और करते रहे हैं और संगम युग के आखिरी सांस तक करते रहेंगे। श्रेष्ठ संघ का रंग क्या होता है, उसकी कमाल क्या होती है, हमारे बीच रखेंगे आदरणीय प्रताप भाई जी। वो ये 500 के नोटों वाला भाई आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया। ओहो, तो ढूंढ ही रहे हैं अभी तक भी। उनका दोस्त देखो, उनका साथी देखो, पूरी निगरानी कर रहे हैं उनकी कुर्सी की भी। चलो जब वो आए तो बता दीजिएगा, मीना दीदी से ले लेंगे।
ओम शांति। आज बाबा ने हमें कहा कि हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं, तो भाग्यवान तो हैं। हम सबका भाग्य तो बाबा ने लिखा है ना। हमें कुछ भी नहीं पता हो, कुछ भी ज्ञान नहीं हो, लेकिन भगवान को तो हमारा प्रेजेंट भी मालूम है और हमारा फ्यूचर भी मालूम है। हम तो केवल अपने पास्ट को जानते हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं जानते। तो ये सबसे बड़ी कमाल तो भगवान की है। हम मधुबन में भी देखते हैं भिन्न भिन्न लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं उनको सेवा करते हुए तो ये लगता है कि ये जो सेवा मिली है उनको एक्यूरेट मिली है। चाहे कोई धोबी घाट में है या कोई लिटरेचर शॉप में है या भंडारे में है, वो एक्यूरेटली अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको चूज किसने किया, सिलेक्ट किसने किया, भगवान ने किया। तो हम सब बहुत बहुत पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं। जब हम ये बहन जी सुना रहे थे, मुझे लगता था ये कहानी भी हमारी है, लेकिन अभी तो उससे हम अलग हो गए ना। जहां हम पहुंच गए हैं वो एक जैसे फैंटेसी लगता है, कभी सोचा भी नहीं था। मुझे भी कभी संकल्प नहीं आया था कि मैं चंडीगढ़ छोड़ के यहां मधुबन में आऊंगा। सब कुछ प्री प्लान्ड है। बाबा हमें हर चीज का महत्व समझाते हैं। सबसे पहले तो महत्व किसका है, हमारी पढ़ाई का है। कितना एम्फेटिकली रोज सुनाते हैं कि पढ़ाई कभी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का कनेक्शन किससे है, सुप्रीम टीचर से है। तो सुप्रीम टीचर से अगर कनेक्शन रखना है तो पढ़ाई से कनेक्शन रखना पड़ेगा, और पढ़ाई हमारा जीवन है, मुरली हमारा जीवन है। मैंने मुरली पढ़ता था, मैं स्टडी भी करता था, लेकिन एक आदत जो मैंने निवे भाई से सीखी वो ये सीखी कि अमृत वेले योग के बाद सबसे पहले मैं मुरली पढ़ता हूँ, खुद अपनी सेल्फ स्टडी करता हूँ। जैसे एक कहीं ना कहीं से अच्छी आदत मिल जाती है, और वो आदत अब वर्षों से चल रही है। कहीं भी मैं ट्रेवल भी कर रहा हूँ तो अमृत वेले के बाद सबसे पहला काम यही करना है, मुरली पढ़नी, स्टडी करनी है, अगर टाइम मिले तो नोट्स बनाने हैं। तो ये जैसे कोई भी हम अपनी आदत बनाते हैं, उस आदत से ही तो हमारा चरित्र बनता है। संघ हम किसको कहते हैं, श्रेष्ठ संघ। जो बहन जी ने कहा, जो सेकंड पार्ट उन्होंने कहा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। हम तो अब सब अनुभवी स्टूडेंट्स हो गए, हमें पता है कि हमें किसका संग करना है। हम कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, चाहे ऑफिशियल पोजीशन के कारण या कभी कभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, तो क्या होता है, छटपटाहट महसूस होती है। हमें लगता है हम इस दुनिया के लिए बने ही नहीं है, क्योंकि हमें अब पता है कि किस संग की वैल्यू है। बाहर लौकिक संबंधियों में कभी जाना भी पड़ता है तो लगता है जितना जरूरी है, जितना समय देना जरूरी है, दिया और फिर वहां से भागे। क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि हमें पता है हमारे जीवन का महत्व क्या है, हमारा समय कहाँ जाना चाहिए, हमारे संकल्प कहाँ जाने चाहिए, हमारी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए। मैंने ये देखा जाने अनजाने में हम कुछ देख लेते हैं ना, अगर उसमें थोड़ी सी भी बुद्धि चली गई वो फिर हमें बार बार याद आती है। हमने दिया तो उसको मे भी 2 मिनट दिए होंगे या 15 सेकंड दिए होंगे, लेकिन फिर वो बाद में याद आता है। इसलिए बाबा कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखे। तो हमारी स्थिति तो भगवान बहुत ऊंची बना रहा है। जो संग लोग बात करते हैं, जो बाबा कभी कभी मुरली में भी कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे, उसकी तो हमें कभी प्रश्न भी नहीं उठ सकता। हमारा संग भगवान के साथ संग है, उनकी याद के साथ संग है, हमारा पढ़ाई का संग है, सेवा में हमारा संग जाता है। जितना समय हम सेवा में देते हैं, बाबा भी कहते हैं कि जब आप किसी को सुनाते हो तो सबसे पहले कौन सुनता है। कुछ भी अगर मान लीजिए शिव बाबा का भी परिचय हम किसी को दे रहे हैं तो पहले तो हम खुद सुनते हैं, तो वो भी हमारी रिविजन होती है। तो ये जो सारी हमारी दिनचर्या बनी है वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए मिली। ये जैसे हमारा एक कवच है, कंपनी भी हमारी एक कवच है। कहते हैं ना कंपनी कलर्स, कौन सी कंपनी कलर करेगी, हमारी कंपनी है सर्वोच्च, शिव बाबा के साथ हमारी कंपनी है। बाबा जब कहते हैं निरंतर याद की बात जब करते हैं तो उसका अर्थ क्या है। बाबा ने हमें ये कहा कि लौकिक को हम अलौकिकता में ले आए, कुछ भी है कोई भी कार्य कर रहे हैं हमें लगता है ये लौकिक सेवा है, लेकिन है उसका अलौकिक रहस्य क्या है। हम किस स्थिति में रहकर सेवा करते हैं। अभी हॉस्पिटल में हमें पेशेंट्स ये बता देते हैं कि ये नर्स आपकी बीके नहीं है, क्योंकि उनको व्यवहार से, उनकी वृत्ति से, उनके कार्य करने के तरीके से पता लग जाता है। वो कुछ बोलते थोड़ी है, ना ही हम कोई भेदभाव करते हैं, लेकिन हर एक की अपना जो ऑरा है जिसको हम बताते हैं वृत्ति कहते हैं, हमारी वृत्ति में क्या है उसमें वहां हम किसकी कंपनी रख रहे हैं, वो सूक्ष्म बात है। उस सूक्ष्म बात पे अटेंशन देने की जरूरत है। एक भाई ने एक बार कहा था कि अगर आप 8 घंटे योग करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 4 घंटे तो स्टडी करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा। हम अपने समय को कैसे सफल करते हैं, क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं कि ये अचानक और एवर रेडी का पार्ट है, लेकिन उसका अभ्यास तो हमें अभी से करना पड़ेगा ना। पढ़ाई का भी, क्या संग रखते हैं, क्या संकल्प है। अभी देखो ब्रह्म भोजन की बात जो है कितनी सूक्ष्म बात है, लेकिन बाबा कभी कभी जो लोग आर्मी में या एयर फोर्स में काम करते हैं तो उनको कहते हैं कि आप बाबा को याद करके भोजन को पवित्र बना के स्वीकार कर सकते हो। तो कितनी पावरफुल है ये याद। उस याद मतलब उसमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या रहता है। कॉन्शियसली हम कुछ, जब हम मेडिटेशन में होते हैं या ध्यान में होते हैं तो कॉन्शियसली हम कुछ विचार क्रिएट करते हैं। मैं तो करता हूं, जब कभी कभी सुबह सुबह अमृत वेले में आते हैं तो मन में कुछ लक्ष्य तो रहता है ना कि आज हमें शिव बाबा के साथ क्या एक्सपीरियंस करना है। तो वो हम कॉन्शियसली थॉट क्रिएट करते हैं कि आज हमें बाबा के साथ माँ के संबंध का अनुभव करना है, या आज बाबा के साथ सखा के संबंध का अनुभव करना है, आज बाबा के साथ मास्टर सर्वशक्तिमान होके बैठना है। तो वो जो हम कॉन्शियसली थॉट्स क्रिएट करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। एफर्ट हमारी कॉन्शियस है, लेकिन तैयार कर रहे हैं हम अपनी स्मृति को, क्योंकि अगर हमारी स्मृति नहीं है, वृत्ति का आधार भी क्या है, हमारी स्मृति। तो हम कॉन्शियसली ये क्रिएट करते हैं, बार बार अपने आप को एम्फेसाइज करते हैं कि बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध हैं, ताकि मेरी वृत्ति कहीं और नहीं जाए। क्योंकि जो तनाव मिलता है, जो स्ट्रेस मिलता है, वो हमें या तो रोल से मिलता है अपने जो हम कार्य करते हैं, या अपने रिलेशनशिप से मिलता है। अब मान लीजिए किसी और के साथ आपका कोई संबंध जैसे होता है कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं, नहीं पूरी होती तो कितना स्ट्रेस होता है। लेकिन बाबा के साथ जब हमारे सर्व संबंध होते हैं, सर्व प्रकार की प्राप्ति भी तभी होती है। हम जो हमें तृप्त अनुभव होता है, जो हमें संतुष्टता होती है, वो बाबा के साथ सर्व संबंध निभाने से होती है। वो है असली कंपनी हमें। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम थोड़ा रिलैक्स करें, इजी हो जाएं, कुछ मन की बात करें, लेकिन मैंने ये देखा मन की बातें कब होती हैं, जब हम अपने आप से संतुष्ट नहीं होते या कभी दूसरों से संतुष्ट नहीं होते। तो लेकिन जब बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध होते हैं, वहां जब लेन देन होती है, तो फिर असंतुष्टता की बात नहीं रह जाती, फिर सब संग एक के साथ ही सबसे श्रेष्ठ संग है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो साकार बाबा बच्चों को पत्र लिखते थे, तो एक भाई थे उनका नाम भगवान था, तो बाबा उनको एड्रेस करते थे भगवान के बच्चे भगवान, तो वो इतना नाचते थे। तो जैसे बहन जी भी सुना रहे थे कि मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो पहली बार घर से निकले थे, तब तक तो आप घर के प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में थे, सब लोग ज्ञान में थे, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो बाहर की दुनिया का तो तब पता लगता है। तो हमारे बड़े बहन जी ने वो पालना या हमें कंपनी कैसे दी, पत्रों के द्वारा। वो पत्रों में क्या होता था, बाबा की मुरली की रोज की पॉइंट्स होती थी, तो वो मैं पत्र काफी देर तक संभाल के रखे, एक बार नहीं उस पत्र को पढ़ता था, अनेक बार पढ़ता था। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो तभी तो आपका इम्तिहान होता है, जब आप संगठन में हैं तब तो आप प्रोटेक्टेड हैं। मैं कभी कभी अभी कहता हूं कि हम लोग तो यहाँ प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में, आप सब लोग फील्ड में हैं, आप लोग कर्म क्षेत्र में, हम तो घर में बैठे हुए हैं आराम से। तो वो हमारा जब बाहर जाने का समय था तब बहुत टेम्पटेशंस थी, कुछ भी हो सकता था जीवन में, लेकिन प्रोटेक्ट किसने किया। मैंने बाबा को एक पत्र लिखा, 68 की बात है, मैंने वहां से रोहतक से बाबा को पत्र लिखा मैंने कि बाबा अभी यहाँ तो कोई कंपनी भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आप उठते हैं सुबह या नहीं उठते, मुरली पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। तो बाबा ने एक भाई को खास भेजा, वो दिल्ली से खास मेरे लिए मुरलियों का पैकेट और टोली लेके आया, और फिर वो भाई ने धीरे धीरे, उनको अपना संकल्प था, उनका लौकिक घर रोहतक में था, धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस रोहतक में शिफ्ट किया, गीता पाठशाला खोली। तो जब आपका स्ट्रॉन्ग संकल्प होता है तो सब साधन भी मिल जाते, लेकिन हमारे विचारों की दृढ़ता होनी चाहिए। हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, पीछे बाबा ने कहा था आपको सभी तत्वों को पावन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे पावन हम, उनको कंपनी कैसे देंगे। सब लोग हमें देखते तो है ना कि हम विपरीत परिस्थितियों में कितना अचल रहते हैं। किसी को भी मदद हम तब कर सकेंगे, तत्वों को भी हम स्ट्रेंथ तब दे पाएंगे जब हम खुद स्ट्रांग होंगे। तो हमारी स्ट्रेंथ किससे है, हमारी स्ट्रेंथ तो बाबा की याद से है, बाबा की कंपनी से है, हमारी स्ट्रेंथ मुरली से है, हमारी स्ट्रेंथ अपने चिंतन से है, हमारी स्ट्रेंथ अपने परिवार की कंपनी रखने से है। तो हम सभी इन बातों को जब समझ जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी जिम्मेवारी क्या है, फिर हम विजुलाइज कर सकते हैं, फिर हमारे सामने इमेज आता है कि मेरा रोल क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। केवल अपने आप को सेफ नहीं रखना है, केवल इतना ही नहीं कि मैं अपने आप को सेफ रखूं, लेकिन दूसरी आत्माओं के लिए सहारा बनूं, सपोर्ट बनूं, उसके लिए मुझे क्या करना है। वो जो मेरा संग, मुझे जो श्रेष्ठ संग मिला है, वो श्रेष्ठ संग दूसरों को कैसे दूं? तो पहले तो हमें उस नशे में रहना होगा ना। बाबा कहते हैं आपके चेहरे से नजर आए, आपके चलन से नजर आए। तो हमारी स्ट्रेंथ तो हमारी चलन में है ना, अंदर बाहर। देखिए हम कितना भी कुछ कर लें, अगर हम खुद क्लियर नहीं है, खुद स्पष्ट नहीं है अपने आप से, तो क्या होगा? तो हमें अपने आप को अंदर बाहर एक जैसा रखना पड़ेगा। हम भले मान लीजिए कोई कार्य हमारे बस का नहीं है, नहीं कर सकते, तो उसको एक्सेप्ट करें कि हमें इसमें मदद की जरूरत है। सहयोग मांगने में कोई बात नहीं है। कोई भी कार्य होता है, चाहे वो ईश्वरीय सेवा का है, चाहे अपनी पर्सनल स्थिति का है, तो हमें सपोर्ट मांगनी चाहिए, मदद मांगनी चाहिए। बहुत बार आजकल तो ये बहुत होता है कि लोग एक्सप्रेस नहीं करते, खासतौर पे यंगर जनरेशन जो है। आप ये देखें सुसाइड का रेट या डिप्रेशन का रेट क्यों बढ़ रहा है? अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, माँ बाप से भी शेयर नहीं करते क्या उनके जीवन में हो रहा है। लेकिन हम ब्राह्मण जीवन में हमें जब भी कठिनाई आए, तो कठिनाई जब भी आए तो जरूर कोई ना कोई मदद मांगे, किसी श्रेष्ठ कंपनी को ढूंढे। उस समय अपने आप को नेग्लेक्ट नहीं करें। अब मुझे बचपन की बात याद आती है, बहन जी ने अचल बहन की बात की, मुझे याद है मैं वहां से चंडीगढ़ से कोई दूर 20-22 किलोमीटर पिंजोर है, वहां गांव के हॉस्पिटल में काम करता था। अब जैसे ही कुछ हमारा ऊपर नीचे होगा, वैसे वहां हमारे बहन जी को लगेगा कि आज कुछ करने की जरूरत है। तो क्या होता था, वहां से भोजन बना के एक पैकेट में ड्राइवर को दे देते, वो ड्राइवर मुझे, बस का ड्राइवर आके हॉस्पिटल में दे देता। तो संकल्प जो है हमारे बहुत पावरफुल है। हम लोग अपने जीवन को मैनेज करने की कला सीखें कि हमें अपने आप को कैसे मैनेज करना है। कंपनी का अर्थ तो यही है ना कि हम एक दूसरे को नर्चर करें, एक दूसरे को स्ट्रेंथ दे। ब्राह्मण परिवार में मुझे शुरू के दिनों की बात है, उन दिनों प्रकाश बहन होती थी, हमारे पेरेंट्स अगर एक दिन क्लास में या दो दिन नहीं गए तो वो रिक्शा करके घर में आ जाते थे पूछने के लिए क्या हुआ। छोटा परिवार था तब। तो हमें भी ये देखना आवश्यक है कि हमारा जो परिवार है उसमें क्या किसी को मदद की जरूरत है, किसी को कंपनी की जरूरत है, किसी को संघ की जरूरत है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अवेक रहें, अलर्ट रहें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता। अभी यहां जैसे बहुत बड़ा परिवार है, किसी को हम 2-3 दिन नहीं देखते तो प्रश्न उठता क्या हुआ, कहीं बाहर गए हुए या स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भले ही चिंता नहीं होती लेकिन कंसर्न रहता है। तो परिवार का अर्थ ही है, कंपनी का अर्थ ही है कि एक दूसरे के प्रति कंसर्न रहे कि कोई पढ़ाई क्यों मिस कर रहा है, कोई ये श्रेष्ठ कंपनी में क्यों मिस कर रहा है। तो हमें इस बात के लिए ये समझना, ना केवल हम अपने आप की पालना करने के निमित्त है लेकिन अन्य आत्माओं की पालना करने के भी निमित्त है। जैसे बड़ी बहनों ने हमारी पालना की, जैसे बाबा ने हमारी पालना की, बाबा ने हमें संभाला। बाबा तो मुरली में सब कुछ कह देते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं कि फलाने बच्चे का पत्र नहीं आया, इतने दिन हो गए। तो बाबा को भी कंसर्न रहता है। भले ही हम समझते हैं हर एक का अपना भाग्य है, हर एक के अपने कर्मों के लेखा जोखा है, और सबको अपने कर्मों का लेखा जोखा क्लियर भी करना है, लेकिन कर्मों के लेखा जोखा क्लियर करने में हम एक दूसरे को थोड़ा सहयोग तो दे सकते हैं। एक बार हमारे बड़े बहन जी थे, अचल बहन नहीं दूसरी बड़ी बहन थी, तो उनकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई। तो नेचुरली जब मैं वहां था तो सहयोग दिया, तो एक दिन मेरे से पूछने लगे जब वो ठीक हो गए, तो क्या ये हमारा कोई कर्मों का हिसाब किताब बना या क्लियर हुआ। तो मैंने कहा देखो मैं तो ये समझता हूं कि आप ईश्वरीय सेवा के निमित्त हैं, तो मैं ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बना कि जब आप जल्दी अच्छे हो गए। इंडिविजुअल तो क्या होगा हमारा, तो इसलिए हम भी ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बनते हैं अगर एक दूसरे को सहयोग देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनकी स्थिति को एक सपोर्ट देते हैं, वो है संग। आजकल तो लोग वाइब्रेशंस की बात करते हैं, ऑरा की बात करते हैं। हम जानते हैं कभी कभी हमारे मन में प्रश्न उठता है कि मैंने तो इसको कुछ कहा नहीं लेकिन फिर भी ये मेरे से नाराज क्यों है। कुछ ना कुछ अगर हम अपने आप को चेक करेंगे हमारे मन में कुछ ना कुछ नॉट सो पॉजिटिव थॉट आया होगा उस आत्मा के प्रति, और वो पहुंच जाता है क्योंकि ब्राह्मणों की क्लीन स्टेट है, स्लेट है, और क्लीन स्लेट पे सब कुछ नजर आ जाता है। तो हमें कितना अटेंशन रखने की जरूरत है कि हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाते रहें, कि अगर हमें याद भी आए, कोई स्मृति में भी आए तो उसकी विशेषताएं आए। एक भाई थे तो वो कहते मैं हमेशा 80-20 का फार्मूला अपनाता हूं। मैंने कहा वो 80-20 का फार्मूला क्या है। वो कहते मैं हरेक की जब देखता हूं तो उनकी 80% विशेषताओं को देखकर चलता हूं, जो 20% अगर किसी में कोई कमी है तो उसको पीछे हटा देता हूं, तो मैं आराम से चल सकता हूं। तो हम सभी पुरुषार्थी हैं, हम सभी अपने आप से मेहनत कर रहे हैं। तो बाबा जैसे कहते हैं ना, हम देखें तो किसी की विशेषताओं को देखें। पिछली लास्ट कई अव्यक्त मुरलियों में बाबा हमेशा इस बात पे एम्फेसाइज करते थे, शुभ भावना, शुभ कामना, गुड विशेस एंड प्योर फीलिंग्स हर एक के प्रति। क्यों एम्फेसाइज करते थे? क्योंकि हमें आगे बढ़ाना चाहते थे कि हम किसी की भी नेगेटिविटी में नहीं फंसे। बचपन में हम वो एक कहानी सुनते थे, एक व्यक्ति उनका बच्चा कहते हैं गलत कंपनी में चला गया था, तो उसने एक बच्चे को एप्पल का एक बॉक्स मंगवा के दिया और उसमें एक एप्पल पे थोड़ा सा दाग था, कहा इसको भी साथ में रख दो। तो जब एक हफ्ते के बाद देखा तो सभी एप्पल्स को दाग लगे हुए थे। तो भाव ये कि किसी की हम छोटी सी भी कमी को नोटिस कर लेते हैं तो वो फिर हमारे चिंतन में चली जाती है। तो इसलिए जब हम किसी को कंपनी भी देते हैं तो 80 वाला वो फॉर्मूला ध्यान में रखें, हर एक में विशेषताएं हैं, हर एक में कुछ न कुछ कमी भी है, क्योंकि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं फिजिकल हेल्थ में भी देखता हूं, किसी को स्टमक की होती है तो किसी को नेक में पेन रहता है, किसी का स्केलेटल सिस्टम में, हर एक का कोई ना कोई वीकनेस है, क्योंकि हर एक को कोई एक ही रोग नहीं होता, किसी को कुछ, किसी को एलर्जी की तकलीफ होती है, तो हर एक में कुछ ना कुछ। ये कलयुगी दुनिया है, तमो प्रधान समय, कोई भी परफेक्ट तो है नहीं, ना फिजिकली ना मेंटली ना स्पिरिचुअली, बन रहे हम, और हमारी फाउंडेशन तो स्पिरिचुअलिटी है। हम बाबा ने हमें यही बताया है ना कि योग से ही हमारी निरोगी काया बनेगी, योग से ही हम अपने कर्मों का हिसाब किताब क्लियर कर पाएंगे, या योग से करें या भोग से करें। तो योगी आत्मा जो है उसको योग में ही अपनी वीकनेसेस सामने आती हैं, तभी वो मेहनत कर पाता है। योग से हमारी कर्मेंद्रियां भी शीतल होती हैं बाबा कहते हैं, क्योंकि जो मुश्किलें आती हैं वो मुश्किलें आती हैं हमें डिस्ट्रैक्शन से, कोई डिस्ट्रेक्शन हो गई किसी भी तरह की, किसी को सुनने की डिस्ट्रेक्शन, किसी को भोजन करने की डिस्ट्रेक्शन, किसी को कुछ सुंदर देखने की डिस्ट्रेक्शन, तो उस डिस्ट्रेक्शन से ही जो हमें डिस्टर्बेंसेस होती है। यहाँ एक महात्मा जी हैं, बाबा तो क्रिश्चियन प्रीस्ट की मैं देखता हूँ, उनको शंकर मठ में रहते हैं, टॉल हैं, लेकिन मैंने उनको जब भी देखा है ना, उनकी नजर एक साथ इधर नहीं देखेंगे उधर नहीं देखेंगे, चलेंगे तो सीधा। इतने सालों से मैं उनको देख रहा हूँ, शुरू शुरू में तो वो थोड़ा बीकेज के एंटी भी बोलते थे, लेकिन अभी तो बहुत परिवर्तन हो गया। मैं तो जब भी मिलता हूँ तो अपने हिसाब से ब्लेसिंग ही देते हैं। तो भाव ये है कि कंपनी बहुत सूक्ष्म चीज है, संघ बहुत संभाल करने की जरूरत है। बाबा कहते हैं वो तो ग्रॉस चीजें हैं, वो तो अब हमारे लिए पीछे रह गई है, अभी तो हमें संभाल करनी है अपनी वृत्ति की, अपने सबकॉन्शियस माइंड की, कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या फीड कर रहे हैं, तो उसकी संभाल करनी है। हम कुछ देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्योंकि आज वो आपको हलचल में नहीं लेके आएगा, लेकिन 10 दिन के बाद वही बात आपके इमेज में आ जाएगी। हम कभी कभी सोचते हैं ना, कभी कभी सिनेमा देख लें तो क्या है, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और फिर वो रील घूमती है, याद आती है। इसलिए हमें अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखना है, सेफ रखना है। अभी हमें पता है कि हम जैसे अपने आप को उड़ा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो जब उड़ते हैं तो फिर उसमें क्लैनलीनेस भी चाहिए, शुद्धता भी चाहिए, इम्प्योरिटीज थोड़ी भी होंगी तो हमें वो ड्रैग करेंगे नीचे, तो थोड़ी भी इम्प्योरिटी नहीं आनी चाहिए। बाबा हमेशा एम्फेसाइज करते हैं कि बच्चे अपना पोता मेल रखो, हालांकि मैं नहीं रखता चार्ट, बहुत बार कोशिश करता हूँ, दो चार दिन रखा फिर छोड़ दिया, लेकिन मैं अभी गया था जयपुर तो देखा मेहनत करने से प्राप्ति हो। वहां बहन जी ने सब भाई बहनों को पोता मेल की बुकलेट प्रिंट करके दी हुई है और सब अपना पोता मेल लिखते हैं। वो किताब ही मैंने देखी, मैंने सुषमा बहन को कहा कि हमें भी एक ये पोता मेल की किताब दे दो, क्योंकि मॉनिटर करना पड़ता है अपने आप को, अपने आप को हमें मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारी जर्नी है वो बहुत बड़ी ऊंची जर्नी है। तो जब मॉनिटर करते हैं तो जब हमें मालूम पड़े कि ये संकल्प मेरा राइट नहीं है तो उसको वहीं ब्रेक लगानी पड़ेगी ना, नहीं तो अभी होता तो ये है ना कि हम भी वही करते हैं, दुनिया वाले भी वही कंप्लेंट करना करते हैं कि हम करना तो ये नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, क्योंकि हम बह गए, बहाव में चले गए, स्ट्रांग वेव आ गई। लेकिन स्ट्रांग वेव शुरू कहां से होती है, वो हमारा एक चित्र है ना जो दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि अगर आग थोड़ी होती है तो उसको बुझाने के लिए थोड़ा पानी काफी है, बढ़ जाती है तो उसके लिए फिर फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ती है, तो फिर भी कुछ ज्यादा मुश्किल हो जाएगी तो हमें भी किसी बड़े के पास जाना पड़ेगा, फायर ब्रिगेड के पास। तो हम अपने आप को ब्रेक लगाना भी सीखे। लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेंस ऑफ कंट्रोल। कहते भी है ना, मन जीते जगत जीत। मैं बचपन में ये सोचा करता था, मन को जीतने से जगत जीत कैसे बन सकेंगे, लेकिन अभी बाबा ने क्लियर किया है, मन तो जैसे एक बच्चे की तरह है, उसको हमें ट्रेन करने की जरूरत है। बाबा ने हमारे मन को ट्रेन कर दिया एक राइट वे में सोचने का, राइट वे में बिजी रखने का। तो जब हम आत्म संयम की बात करते हैं, मन को यूं कहें सुमन बनाएं या मन को समझें, मन को ट्रेन करें, मन को साध लें, कि मुझे करना क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और उसके लिए फिर जो जरूरी होगा वो मेरे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। क्योंकि प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भी कार्य हम जीवन में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्लान करना पड़ता है, और फिर प्लानिंग से कोई डेविएशन हो तो उसको करेक्ट भी करना पड़ता है, अपने रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये श्रेष्ठ कंपनी जो है वो हमारा रिसोर्स है, हमारी स्ट्रेंथ है, उसी से हम श्रेष्ठ बनते हैं। मैंने बाबा साकार बाबा को जब मैं स्कूल में पढ़ता था एक पत्र लिखा था, वो शब्द मुझे अभी तक याद है। मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मुझे पढ़ना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। तो बाबा ने एक लाइन में उत्तर लिखा, बाबा ने लिखा, बच्चे भल पढ़ो, दोनों बाप का नाम बाला करना है। तो हमको भी बाबा जैसे बार बार यही सिखाते हैं ना कि हम जैसे वो सुनते भी हैं कि सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, तो हमें ये सोचना है ना कि हमारे संकल्पों का कितना महत्व है, हमारे जीवन का कितना महत्व है, हमारे कर्मों का कितना महत्व है। तो उस पे हम एम्फेसाइज करें कि कोई हमारा कर्म ऐसा नहीं हो जिससे लोग सरप्राइज हो कि ये ब्रह्मा कुमार और ये ऐसे करता है। अब यहाँ तो माउंट आबू में हर एक व्यक्ति हमें ओम शांति वाला कहते हैं, माउंट आबू में सब यहाँ ही आके मैंने सुना जो भी मिलेगा ये ओम शांति वाले हैं। तो पहले ही क्या बुद्धि में रहता है कि हमें अपना टेम्पर तो लूज नहीं करना है ना, शांति वाले हैं। तो इसलिए हमें बाबा ने इतनी रिकॉग्निशन दी है, इतनी अवेयरनेस दी है कि हमें समझाया कि बच्चे आप क्या हो, हमारी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। पहले पहले ही हम पहला जो लेसन पढ़ते हैं वही हमारी फाउंडेशन है। श्रेष्ठ आत्मा है, श्रेष्ठ हमारे गुण है, श्रेष्ठ हमारी पढ़ाई है, श्रेष्ठ हमारा बाप है, श्रेष्ठ ये समय है। तो यही हमारी स्ट्रेंथ है ना, तो यही तो हमारी फाउंडेशन है। तो इसलिए हम जितना सूक्ष्म बातों पर अटेंशन देंगे, जितना सूक्ष्म अपनी दिनचर्या पर ध्यान देंगे, उतना फिर वो स्थूल चीजों में राइटियस वे में रिफ्लेक्ट करेगी। अभी ऑनेस्टी है या कंपैशन है या सहयोग देने की भावना है या जीवन में धीरज रखने की भावना है, ये सब हमारी स्ट्रेंथ है। उसी से तो हमें पता लगता है कि हमने पढ़ाई को कितनी अच्छी तरह से समझा है, पढ़ाई हमारे जीवन में कितनी उतर गई है। हम सब लोग कहते हैं ना जब अपना परिचय देते हैं कि हम 25 वर्ष से ज्ञान में हैं, हम 40 वर्ष से ज्ञान में हैं, तो उससे भाव क्या होता है कि हम कितना ज्ञान स्वरूप बने हैं, कितना एम्बॉडीमेंट है ज्ञान, हमारे कर्मों से कितना रिफ्लेक्ट करता है, उसका महत्व है। हमारी कंपनी से लोग तर जाएं, ऐसा होना चाहिए कि जो हमें मिले उसको सहारा मिले, जो हमें मिले उसको स्ट्रेंथ मिले, वो होना चाहिए। अब तो लोग कहते हैं नजर से निहाल करते हैं, तो अब नजर से निहाल कौन करेगा, हमें ही तो करना है सबको नजर से निहाल। बाबा ने हमें नजर से निहाल किया और अभी हमें अनेक आत्माओं को नजर से निहाल करना है, और वो हम कैसे करेंगे नजर से निहाल। कल की एक मैं उदाहरण बताता हूँ। हम लोग एक ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट एडवर्टाइज की थी, तो एक परिवार आया, ज्ञान से उनका कोई परिचय नहीं था, और वो आए तो उनको मुझे कहा कि उनको सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई है, और उनको ये बताया कि आपको सैलरी 14,000 मिलेगी, लेकिन वो चाहते थे उनको 20,000 मिले। बच्चा मैंने एक दो दिन उसको ऑपरेशन थिएटर में भी भेजा, तो वो जो ऑपरेशन थिएटर की इंचार्ज डॉक्टर थी वो उससे काफी सेटिस्फाइड थी। उसने कहा कि बच्चे की नॉलेज साउंड है और प्रैक्टिकल भी। तो उसके फादर और फिर फादर के अंकल, ये दोनों लोग आए मेरे रूम में, तो बातचीत हुई। तो उन्होंने सैलरी की बात डिस्कस ही नहीं की, वो इतने प्यार से मिलके चले गए। अभी मुझे मैसेज मिला कि उनकी मदर आना चाहती है, वो भी आके एक चक्कर लगा के जाना चाहती है। सब कुछ उन्होंने डिस्कस किया लेकिन सैलरी की बात ही नहीं की मेरे से। कहा नहीं, जो आप कहेंगे वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो कंपनी, उनको लगा कि यहां उसको संग क्या मिलेगा। आजकल परिवार में लोग बहुत चिंतित हैं कि बच्चे कहीं जाएंगे। पहले तो उनके मन में क्वेश्चन था कि वो बड़ौदा से यहां क्यों आए। तो कंपनी, अभी परिवार वाले लोग भी कंपनी के महत्व को जानते हैं। तो इसलिए हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि हम सबको अपना ऐसा संग दें कि उनका भी श्रेष्ठ जीवन बन जाए। हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट करें। बाबा बहुत बार हमें कहते हैं कि बच्चे आप आधार मुहूर्त हो, उद्धार मुहूर्त हो। कहने में वो सिंपल शब्द हैं, लेकिन सारी दुनिया को तारना, सारी दुनिया को पार लगाना कर सकता है कोई, लेकिन बाबा ने तो हमें जिम्मेवारी दे दी। उसका फेथ हमारे में है, बाबा ने हमारे में फेथ रखा है कि बच्चे आपके ऊपर ये जिम्मेवारी है। तो इसलिए हम जितना जितना आगे बढ़ते हैं, जितना अपनी स्थिति को आगे बढ़ाते हैं, उतना ही हम अपने जीवन के महत्व को भी समझते हैं, हम सेवा के महत्व को भी उतना समझते हैं, और फिर ये भी समझते हैं अपनी जिम्मेवारी क्या है। तो अभी तो हमें अपनी जिम्मेवारी को समझने की बात है कि हमारे संग की वैल्यू क्या है, हमें क्या रिफ्लेक्ट करना है, हमें तत्वों को पावन बनाना है। सूरज भाई कभी कभी मुरली में या वैसे वो कि कभी कभी अपने आप को धरती के गोले पे ऊपर बिठा दो और फिर सारी दुनिया को साकाश दो। सारी दुनिया आपके सामने है। बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा के सामने तो क्लियर था इमेज, जब वो बड़ी दादियों को कहते थे कि आपके सामने क्या आने वाला है। जब उनको तैयार किया बाबा ने, तो उनको तैयार किस चीज के लिए किया? विश्व की सेवा के लिए किया, अनेक आत्माओं की सेवा के लिए किया। कभी कभी हम बड़े, हमें सुनाते थे अमीरचंद भाई कि मधुबन में मुश्किल से 20 लोग होंगे तो बाबा का मुरली में मैसेज आएगा कि मधुबन में मधुबन फुल हो गया है, पूरा सीजन चल रहा है। तो अभी क्या है? तो लेकिन बाबा के सामने वो इमेज था, बाबा के सामने वो सब क्लैरिटी थी कि हम बच्चों का रोल क्या है, हमें क्या सेवा करनी है, हमें कैसे दुनिया को देखना है। सो ये सृष्टि रंगमंच है और हम हीरो एक्टर्स हैं। हीरो एक्टर्स को डिफिकल्टीज तो आएंगी, लेकिन हीरो तो हमेशा विजयी होता है, विक्ट्री उसकी है, सक्सेस भी उसकी है। तो हम सभी हीरो एक्टर्स हैं। तो हीरो एक्टर्स को अपनी नरिशमेंट का ध्यान भी रखना है और दूसरों को नर्चर भी करना है, पालना भी करनी है। इसलिए हमारे लिए जो हमारे संग को स्ट्रांग बनाने वाले हैं वो बाबा है, मुरली है, हमारा परिवार है, हमारी पढ़ाई है, हमारी सद्गुणों की धारणा है, हमारी सेवा है, यही हमारी श्रेष्ठ कंपनी है। इसी में हमारा समय जाना चाहिए। हमारा समय तभी सफल होगा जब इन चीजों में हम समय मैक्सिमम लगाएंगे। ओम शांति।
ये लगता था अभी बातें शुरू ही हुई हैं और खत्म भी हो गई हैं। अभी तो कुछ कहानियां और भी सुना सकते हैं आप। एक कहानी और सुनाइए कोई। क्योंकि ज्ञान के गहन चिंतन में तो इनको भी कुछ कुछ कार्य मिला हुआ है, लेकिन साकार बाबा मम्मा की बातें, वो क्या करते थे, कैसे करते थे, ऐसी ऐसी बातें, हर एक के साथ एक अलग अलग अनुभव है, तो वो सुन के और मजा आता है, अच्छा लगता है। सुनाइए भाई। वो कहते सवा एक तक, तब तक मधुबन निवासी भोजन कर लेंगे। वो राखी बंधवा रहे हैं, वो वहाँ भोजन करने पहुंचे तो वो भोजन कर लेंगे। और आप सभी को उस बड़े डाइनिंग हॉल में भी, एक अलग डाइनिंग हॉल है, वहां जाके भोजन करना है, तब तक खाली भी हो ही जाएगा।
हॉस्टल में जब मैं पढ़ता था तो बहुत चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज तो भोजन का आता था, कि हॉस्टल में तो जो भोजन मिलता था, कभी हम खाते थे कभी नहीं खाते थे, सोचते थे कहां फंस गए। कभी कभी ऐसे भी लगता था कि क्यों ये डिसीजन लिया घर से बाहर निकलने का। तो बहुत बाबा को याद भी करते थे। फिर एक दिन मैंने हिम्मत की तो जो हमारा कंट्रैक्टर था वो विडोअर था, उसको मैंने समझाया। मैंने कहा देखो, मुझे भगवान से ये इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि ये अनियन गार्लिक नहीं खाना। अब मुझे बहुत लगता है कि भगवान मुझे सजा देगा मैं ये खाता हूं तो उसने मेरी बात सुनी ध्यान से। उसने कहा ठीक है। वो नेक्स्ट डे जाके नए बर्तन लेके आया और उन्होंने अलग से मेरा खाना बनाना शुरू किया। तो वो मेरा नाम ही पड़ गया वहां के, ये फीके डॉक्टर हैं, क्योंकि वो फीका खाना सबको वो क्या बताए कि ये खाना क्यों बनाता है। तो फिर क्या था कि वो जैसे धीरे धीरे इंक्वायरी हुई, वहां तो नॉन वेजिटेरियन फूड भी बनता था, तो कोई भी आपके साथ टेबल पे आके बैठ जाए तो आप किसी को मना तो कर नहीं सकते, झगड़ा भी नहीं कर सकते। तो मैं सोचता था अभी ये सब ये खा रहे हैं पास में बैठे। तो जब वो मेरा फीका खाना बनना शुरू हुआ तो लोगों के मन में क्वेरी, तो कुछ लड़के जैन भी थे, तो उनको जब पता लगा कि यहाँ ये अनियन गार्लिक के बिना खाना मिलता है तो वो भी मुझे ज्वाइन कर गए। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारी टेबल ही अलग हो गई। तो मेडिकल कॉलेज में तो ये होता था कि बच्चे जानबूझ के परेशान करते थे, अब हम लोग तो क्लैनलीनेस रखते थे। अब जैसे हमने स्नान किया है तो शौच गए हैं तो स्नान करेंगे। मैं डायसेक्शन करके आता था, डेड बॉडी होती थी तो डायसेक्शन करके आता था, तो पहले वो सब कपड़े उतारता था। अब पानी होता नहीं था हॉस्टल में, तो चलो भाई हाथ धो लिए, लेकिन उसके लिए मैंने साबुन अलग रखा हुआ था। और जैसे स्टूडेंट्स को पता लग गया तो वो जानबूझ के मेरे कमरे में मेरे बेडशीट पे आके बैठ जाए। तो शुरू शुरू में क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं होती, हम ग्रॉस चीजों पे ध्यान देते हैं, तो वो धीरे धीरे मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि इन चीजों का महत्व नहीं है, महत्व हमारी स्थिति का है, कि हम अपनी स्थिति को कैसे ऑर्डरली बनाते हैं कि कुछ भी हमें विचलित नहीं कर सके। अब वो स्टूडेंट्स होते थे, अब उनके वो अपने कमरे में स्मोक नहीं करते थे, मेरे कमरे में आके स्मोक करते थे जानबूझ के। तो अपनी स्थिति को हमने स्टेबल बनाया तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो अब याद करते हैं सब लोग। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम, बाबा जैसे हमें कहता है कि हम विचलित किसी भी चीज में नहीं हो। कुछ चीजें हमें लगेगा कि लोग रॉन्ग हैं, लोगों का एटीट्यूड रॉन्ग है, ये जानबूझ के परेशान करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन तो भी हम उनके प्रति नेगेटिव भाव नहीं रखें, उनके प्रति हमारे मन में कंपैशन की भावना हो, रहम दिल बने, वो बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो धीरे धीरे मैंने तैयार किया, एक प्रेशर कुकर लेके आया, खुद खाना बनाना शुरू किया हॉस्टल में, तो लोगों को खुशबू आ जाती थी। तो नेचुरली उन दिनों तो ये होता था हॉस्टल में जब थे, तो अब झंझट ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो मैं चपाती तो नहीं बनाता, लगभग पूरा दिन पूरा साल राइस ही खाने। जब कभी गीता पाठशाला में जाते थे तो या घर में जाते थे तब चपाती मिलती थी। हमारे माता जी ये करते थे, जब भी कोई आ रहा होता था चंडीगढ़ से रोहतक, वो 3-4 दिन का भोजन बना के भेज देते थे। आनंद बहुत आता था, कभी कोई कठिनाई नहीं महसूस की। लेकिन कभी कभी हम सोचे, देखो हम कितने लकी हैं, हमारी दृढ़ता जो है, हमारी दृढ़ता ही आधार बनती है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये तो अभी ये सारी चीजें जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन उस समय हम थोड़ा बहुत कुछ न कुछ हलचल तो होती होगी। इसलिए ये आवश्यक है कि हम जितनी डिटर्मिनेशन रखते हैं, जितनी दृढ़ता रखते हैं, फिर बड़ों की सपोर्ट भी बहुत थी। मुझे याद है उन दिनों विनाश की बात होती थी, मुझे कहते थे आप पढ़ रहे हैं, मैं 68 की बात कर रहा हूँ, 68-69 की बात है, तो मुझे कहते आप पढ़ रहे हैं, तब तक विनाश हो जाएगा। लेकिन एक भाई थे, वो मुझे मेरे को इतनी हिम्मत दिलाते थे। वो कहते थे देखो कि बाबा अगर आपको डॉक्टर बना रहा है तो जरूर उसके सामने कुछ लक्ष्य है, डिवाइन डिजाइन है कुछ। तो उसके बाद जब हम चंडीगढ़ में आए तो मैंने जॉब शुरू की। शुरू शुरू में मेरी एक पोस्टिंग हुई यमुनानगर, तो वहां एक कश्मीरी फैमिली थी, दो भाई थे, वो एक का नाम सुरेंद्र भाई था दर, और एक ब्रह्मा कुमार थे। तो ब्रह्मा कुमार भाई जो थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो एक दिन हम वॉक कर रहे थे, उनका नाम ही ब्रह्मा कुमार था, तो उन्होंने मुझे ये कहा, हालांकि मैं अभी मुश्किल से 6 महीने हुए थे मैंने अपनी जॉब शुरू की थी, तो मुझे ये कहा कि आप ये क्लिनिकल काम से पेशेंट देखने की बजाय आप जो कारोबार है ना हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज करने में ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। मुझे कुछ भी पता नहीं उस समय, वो 75 की बात है, 74 की। और फिर जब मैं यहाँ वहां से जब मैं चंडीगढ़ में आया, शायद वो 79 की बात थी। तो पहले तो मैं पीडियाट्रिक्स में काम करता था, बच्चों को देखता था। फिर धीरे धीरे एक दिन अचानक मुझे बुलाया गया, नहीं आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट संभालनी है, क्योंकि जो मैनेजमेंट संभाल रहा था उसके ऊपर कुछ सीरियस डिफिकल्टीज आ गई थी। तो मुझे कहा नहीं आप थोड़े दिन के लिए करो, फिर हम आपको रिलीव कर देंगे। तो वो 83 की बात है, तो जब तक 91 में मैंने छोड़ा नहीं तब तक वो मैनेजमेंट मेरे साथ रही। और उस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग का ये फायदा हुआ कि यहाँ पहुंच गए। यहाँ जब हॉस्पिटल शुरू होना था तो निवे भाई ने मुझे फोन किया, ये 89 में ट्रस्ट बना था, तो कहा नहीं आपको वहां से छोड़ना और यहाँ आना है। तो ये भी डिवाइन डिजाइन था, प्लानिंग तो भगवान की थी ना, और हमें कुछ पता नहीं, ना किसी को कोई रुचि, ना कोई इंटरेस्ट मैनेजमेंट में। तो इसलिए बाबा हमें हमारी विशेषताओं को जानता है, केवल हमें सरेंडर करना है, समर्पण भाव से चलना है। क्योंकि जब हम सरेंडर कर देते हैं, मान लीजिए अब कोई पायलट है या ड्राइवर है, हम सब गाड़ी में बैठे हैं, तो हम सरेंडर कर देते हैं, वी फील दैट वी आर इन द सेफ हैंड्स। ऐसे जब हमने भगवान को जीवन कर दे दिया तो सरेंडर ही करना हो गया। मैं जब यहाँ आया था तो गवर्नमेंट को जो लिख के भेजा था कि हम डॉक्टर की सैलरी का ध्यान रखेंगे, अब यहाँ आके मन में प्रश्न उठता है कि यहाँ आके हम बाबा के घर से सैलरी लें, तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और मैंने सैलरी ली भी कितनी 1200 रुपए, तो मैंने कहा ठीक है मुझे इतना जरूरी है, लेकिन फिर बाद में तो समर्पित जीवन हो गया। हमें यहाँ आने के बाद इतनी प्राप्ति, मैं मुझे याद है दादी जी, दादी प्रकाशमणि, वो कभी भी अचानक हॉस्पिटल में आ जाएंगी, फिर पूछेंगी सबसे चार्ट क्या है आपका, कैसे आप ध्यान रखते हो, कैसे आप संभाल करते हो, भोजन अच्छा रखता, हर बारीक चीजों पे वो ध्यान देते थे। दादी ने एक बार सुनाया मुझे, क्योंकि हम तीन तीन चार चार एक रूम में रहते थे शुरू में, तो दादी कहती थी मोहिनी बहन मेरे साथ रहती हैं, मोहिनी बहन को पंखा चाहिए, मुझे पंखा नहीं चाहिए, मैंने अपना बेड एक कॉर्नर में कर लिया। फिर कहते थे मेरी रात को नींद खुल जाती है तो मैं क्या करूं, तो टॉर्च से मुरली पढ़ते थे। फिर एक दिन मोहिनी बहन को पता लगा होगा, तो फिर उनके साथ वो टेबल लैंप रख दिया। तो मैंने वहां भोजन पे भी कई बार देखा, दादी फीका खाना खाते थे, लेकिन सब मिर्ची वाला खाना खाते थे, उनके लिए अलग बनता था। तो यानी सबकी संभाल बड़ों की एक जैसे वो होता हर चीज के लिए। और ये जो पालना का संस्कार है, ये भी जैसे दादी जी से मिला कि कैसे सबकी संभाल, क्योंकि हम जब तक चंडीगढ़ में थे तो अपनी ही मैनेज करते थे, यहाँ तो धीरे धीरे शुरू में हम लोग 30 थे और आज तो 1000 होंगे पूरे तीनों चारों हॉस्पिटल्स में काम करने वाले। तो फिर अब जो ब्रह्मा कुमार होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ऊंची होती है कि हमारी संभाल कैसे होनी चाहिए। कोई बीमार हो गया आप उससे मिलने नहीं गए, किसी को कोई डिफिकल्टी हो गई, तो आपको सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं जब दादी जानकी के पास जाता था, उनको अपनी डिफिकल्टीज, मुझे कहते थे भाई तुम्हें भी हमारे जैसा बनना है, क्योंकि रहते हैं साथ में तो डिफिकल्टीज आती हैं, संस्कारों का भी टकराव होता है। और जब मैं कभी किसी की बात सुनता हूँ मुझे दोनों राइट लगते हैं, कोई भी रॉन्ग नहीं लगता, तो आप डिसीजन क्या दें, किसकी साइड लें, बहुत मुश्किल होती है। रोज चैलेंजेस तो ऐसे आते हैं, क्योंकि जब इतना बड़ी परिवार होता है, धीरे धीरे ये होता गया कि आप जैसे जैसे स्ट्रांग बनते गए तो समस्याएं भी कम होती गई, ये होता है। तो हमें अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने की जरूरत है। हम स्टेबल होते हैं तो लोगों को लगता है अच्छा कोई मुश्किल होगी तो हम चले जाएंगे। बहुत सी हॉस्पिटल जो है ना, इट्स लाइक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जहां हाउसकीपिंग स्टाफ भी है तो फिर स्पेशलाइज डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, तो कन्फ्रंटेशन तो होती है। हम ये भी नहीं कह सकते कि आप बीके हो कि ये करते हैं, वो कहेंगे ये प्रोफेशनल प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी जरूरत ये होती है कि आपकी पेशेंस को बढ़ाने की जरूरत है। वो कहते हैं पेशेंस रिमूव्स द पेन ऑफ माइंड, लोग सुना लेते हैं उसी से हल्के हो जाते हैं। आप शांति से उनकी बात सुन लें। तो ये चैलेंजेस आते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारा सेवा का स्कोप भी बढ़ता है, हमारी जिम्मेवारियां भी बढ़ती हैं। तो उनको हम जैसे अपने आप को स्ट्रांग करते रहते हैं, अपने आप को स्टेबल करते रहते हैं, तो सब कुछ इजी हो जाता है।
ये तो आपने बताया जो आप स्टूडेंट लाइफ से लेकर अब तक कितना अच्छा सीरीज में बताया आपने कि कैसे कैसे चैलेंजेस को फेस करते आए। बताइए उनका क्या करें, अगर बीके नहीं होते तो कमरे में स्मोक करने वालों को 2 लगाते और भगा देते। वो बीके हैं, उनको डांट भी नहीं सकते, आंख भी नहीं दिखा सकते, लगाना तो दूर की बात है।
वो तो जानबूझ के टीज करने के लिए आते थे,
और इससे ज्यादा भी टीज करते होंगे भाई साहब। आप तो उस जमाने के भी एडवांस ही थे जब डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, इससे ज्यादा भी वो टीज करते होंगे। कोई उस वक्त की जो साथ में गर्ल्स डॉक्टर भी पढ़ती होंगी, फिर आप शारीरिक रूप से भी खूबसूरत थे। फिर आपको ऐसा भी छेड़ते होंगे और अब वो पछता भी रहे होंगे कि ये कितना अच्छा रहा, तब कहते होंगे ब्रह्मचारी रह गया, ऐसा रह गया, पछताएगा, अब वो खुद पछता रहे होंगे। तो ऐसे ऐसे भी कोई बात बताइए।
नहीं वो तो देखिए बातें परिवार की स्ट्रेंथ थी तो ऐसी कुछ चैलेंजेस नहीं आए उस बात में, क्योंकि पेरेंट्स ज्ञान में चलते थे। अगर पेरेंट्स ज्ञान में नहीं चलते होते तो वो डिफिकल्टीज आती। अभी मैं बता, एक साधारण हमारे एक दोस्त हैं, वो कार्डियक सर्जन है। मैं और निर्भय भाई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए थे, तो उसको पता लगा तो वो मुझे एयरपोर्ट पे मिलने आया। तो जिस दिन एयरपोर्ट पे आया तो उस दिन वहां तो विदेश में एक फैशन है कि ब्लैक ड्रेस पहनते हैं, ट्राउजर शर्ट उसकी ब्लैक थी। लेकिन जब वो हमें छोड़ने आया एयरपोर्ट पे, उस दिन उसने सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था। तो ये कुछ किसी को कहने की जरूरत नहीं होती, मुझे ऐसे लगता है। हम परिवार में भी देखते हैं, लौकिक परिवार में भी, तो फैमिली में भी ये होता है कि यू जस्ट हैव टू बी इन साइलेंस। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप बोलेंगे तो फंस जाएंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम जितना कम बोले उतना सेफ रहते हैं। कोई टीज भी करता है, कोई मुश्किल भी क्रिएट करता है, कुछ टॉन्ट भी करते हैं, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होता। लेकिन टॉन्ट करते हैं तो जस्ट स्माइल, और अगर आप उलझन में पड़ जाएं, डिस्कशन में चले जाएं, तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों की साइकोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बना दिया है। क्योंकि बाबा कहते भी है ना कि बच्चे पहले जब भी किसी से बात करो तो पहले किसको देखो, आत्मा को देखो। वो अभ्यास भी तो हो जाता है ना, तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसकी इंटेंशन क्या है। एक्शन से इम्पोर्टेंट होता है इंटेंशन, वो जो कर रहा है उसकी इंटेंशन क्या है, उस इंटेंशन को समझने की जरूरत है। जिसको हम ये कहें नियत क्या है उसकी, अगर उसकी नियत साफ है तो बाबा क्या कहते हैं, मुराद हासिल। लेकिन अगर उसकी नियत में कुछ और है और ऊपर से कुछ और वो प्रेजेंट कर रहा है आपको, तो वो चीज है, उस पर हमें ध्यान। हमें बाबा जी यही तो हमने सीखा है कि हम लोगों को समझें। हमारी हमेशा कंप्लेंट ये होती है कि लोग नहीं हमें समझते, पर हमें लोगों को समझने की जरूरत है। हमारी बहनें बाबा जैसे कहते हैं नब्ज देख के ज्ञान दे, तो बात भी तो नब्ज देख के करनी पड़ेगी, कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है। अब यहाँ पे भी होता है, कई बार लोग आते हैं हम आपको 1,000 करोड़ की डोनेशन देंगे, ये करेंगे, कितनी चिट्ठियां आती हैं, कितने पत्र आते हैं और लोग आके मिलते हैं, आप हमें ये दे दो वो दे दो। लेकिन बाबा ने हमें इतना तृप्त किया हुआ, हम उनको कहते हैं देखिए ऐसा है कि हमें इतनी सब जरूरत नहीं है, आप कुछ करना चाहते हैं तो हम आपको प्रोजेक्ट बना के दे देंगे। तो बहुत लोग आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो समझते हैं ना कि बीके इसको देखें ये कितने पानी में, चैलेंजेस देते हैं। इवन बीकेज भी, जो बीकेज भी है वो भी मेरे पास आया। एक बार एक भाई आया कि 100 करोड़ की डोनेशन देनी है, तो मैंने कहा ऐसा है आप क्यों देना चाहते हैं डोनेशन, कि हमें 50 करोड़ वापस चाहिए उसमें से। तो भाव ये कि लोग जो है ना, अभी बहुत हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम लोगों को देख सके, नहीं तो धोखा खा जाते हैं हम। तो हमें अपने आप को धोखे से भी बचाना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, अभी अपने आप को भगवान कहने वाले भी, अपने आप को विद्वान कहने वाले भी बहुत हैं, और माया भी तो भिन्न भिन्न रूप लेके आती है। तो हम अपने जीवन को खुद समझें, खुद जानें, और खुद एनालाइज करें, किसी की बातों में नहीं आए।